हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जोया को लगातार देखते हुए अबीर को एहसास ही नहीं रहा कि उसके हाथ में सिगरेट थी, जो धीरे धीरे कप की जलकर खत्म हो चुकी थी, और ध्यान ना देने पर अबीर की उंगलियां जल गई थीं। जैसे ही अबीर की उंगली जली, एकदम से उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई, जिसे सुनकर जोया खुद को रोक नहीं पाई और वो मुस्कुराने लगी। तब जोया ने अबीर से कहा, कमाल है ना आपके, मैंने इतने बड़े जख्म पर दवाई वगैरह लगाई लेकिन आपको कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन जरा से जलने पर आओ चिल्ला उठे। ऐसा कहकर जोया वहां से जाने लगी थी, लेकिन अबीर ने अपना एक हाथ मजबूती से रेलिंग पर रख दिया। जोया ने दूसरी साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन अबीर ने दूसरी तरफ भी अपना दूसरा हाथ रख दिया। तब जोया सवालिया नजरों से अबीर की ओर देखने लगी थी। जोया ज्यादा देर अबीर की आंखों में नहीं देख पाई थी और उसने अपनी नजरें झुका ली थीं। तब अबीर ने जोया को गहरी नजरों से देखा और बोला, आपसे किसने कहा था मेरी मरहम पट्टी करने के लिए? क्या मैंने आपसे कहा तो फिर क्यों आई आप? अबीर की बातों में जोया के लिए नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, वो एक्चुअली डॉक्टर और अकरम भाई ने मुझे सब सच बता दिया था कि आपने मुझे अगवा नहीं किया है, बल्कि मेरी जान बचाने के लिए आप मुझे यहाँ ले आए हैं। जैसे ही जोया ने ये कहा, अबीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और अबीर ने अपना एक साइड पर रखा हुआ हाथ जोर से उस लोहे की मजबूत बड़ी सी रेलिंग पर दे मारा। जोया उसका ये रिएक्शन देखकर एकदम से डर गई और उसने डर के मारे अपना सिर अबीर के चौड़े मजबूत सीने में छुपा लिया। जैसे ही जोया ने अबीर को छुआ, उसके जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया और उसके होंठ कम कपा गए, लेकिन फिर अबीर ने अपने सीने से लगी हुई जोया के बाल एक हाथ से कसकर पकड़े और उसका दूसरा हाथ जोया की कमर पर था। उसके बाद जोया का चेहरा ऊपर करते हुए उसे देखते हुए वो तल्ख लहजे में बोला, आखिर क्यों मुझ पर भरोसा करने के लिए तुम्हें किसी और की गवाही की जरूरत होती है? ऐसा क्यों? क्यों यकीन नहीं करती हो मुझ पर, मेरी मोहब्बत पर? ऐसा क्यों? क्यों हर बार मुझे गलत समझती हो? हाँ, मैं जानता हूँ, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं करने देता है, मैं जानता हूँ, लेकिन हर मर्द गलत नहीं होता है। हर मर्द औरत को केवल हवस की नज़र से नहीं देखता है। दुनिया में ऐसे भी मर्द हैं जिनमें मोहब्बत के अलावा और कुछ भी नहीं है, किसी तरह की कोई चालबाजी नहीं है। तब जोया बोली, मिस्टर अमीर राठौर, प्लीज छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। तब अबीर बोला, दर्द हो रहा है ना तुम्हें? मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी बुरा लगता है ये सोचकर कि मेरी बीवी मेरे अलावा बाकी सब पर भरोसा करती है। अब जोया अबीर के और इल्ज़ाम सह नहीं पा रही थी और वो बोल पड़ी, अच्छा, आप कहते हैं मैं आप पर भरोसा नहीं करती, तो उस दिन गार्डन में चोरी छिपे मुझे इंजेक्ट करके आप यहाँ ले आए और मुझे कुछ बताया भी नहीं। अगर आप मुझे इस तरह से सुई चुभाकर यहाँ नहीं लाते और मुझे बता कर लाते तो क्या मैं आपको मना कर देती? क्या मुझे जल्दी ठीक होने का शौक नहीं है? देखिए, मेरी जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, शादी, इन सब की कोई जगह नहीं है। आपने बिना मेरी मर्जी के मुझसे शादी की है, अब आप मुझसे कुछ और उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं कभी आपको अपने पति होने का हक दे पाऊंगी। जैसे ही जोया ने ये सब कहा, अबीर की आंखें एकदम से सुर्ख हो गई थीं। एक तो वो जोया को अपने इतने करीब पाकर खुद को मुश्किल से रोके हुए था, क्योंकि जोया के लिप्स बेहद खूबसूरत थे और अब अबीर के उसके बाल पकड़ने के बाद उसके लिप्स अबीर के बेहद करीब थे। जोया के नर्म गुलाबी होंठ को देखकर अबीर की जुबान सूखने लगी थी। अबीर का दिल चाह रहा था कि अभी इसके होठों से ही अपनी प्यास बुझाए, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया था। उल्टा जोया की बातें सुनकर उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। तब कुछ देर देखने के बाद अबीर ने उसे कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी बिना मर्जी के तुमसे शादी करके मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है तो ठीक है, मैं तुमसे अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, और आज के बाद अबीर राठौर तुमसे कोई भीख नहीं मांगेगा इस रिश्ते को अपनाने की। और हाँ, मैं वादा करता हूँ तुमसे, जिस दिन मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा और तुम्हारे दुश्मनों के सामने खड़े होने के काबिल तुम्हें बना दूंगा, उस दिन मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये वादा है अबीर सिंह राठौर का। ये कहते हुए अबीर का गला रुंध गया था, जिसे जोया ने बखूबी महसूस किया था। त तभी अबीर ने ज़ोया के बालों को एक झटके से छोड़ दिया और ज़ोया ने जो उसके सीने पर मरहम पट्टी की थी उसे मुट्ठी भरकर उसे नोच डाला और ज़ोया के हाथ में थमा दिया। ये देखकर ज़ोया की चीख निकल गई थी क्योंकि अचानक से पट्टी खींचने पर उसे फिर से खून निकलना शुरू हो गया था। अबीर का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे के अंदर गया और अपना तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अबीर की नाराज़गी देखकर ज़ोया के गाल तप गए थे और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई पट्टी को देख रही थी जो अबीर राठौर उसे थमा कर गया था। ज़ोया को अबीर का ये बर्ताव अंदर तक तड़पा गया था। ये फीलिंग ज़ोया को काफ़ी अजीब लगी थी। ज़ोया को अबीर के लिए बहुत बुरा लग रहा था, शायद इसलिए कि वो ज़ख्म अबीर को ज़ोया ने दिया था। ज़ोया ने मन ही मन सोचा, आखिर ये मिस्टर अमीर राठौर समझते क्या है अपने आप को? एक तो गलती ये करे और नखरा भी वापस ये ही दिखाए, मैं भी देखती हूँ कैसे पट्टी नहीं करवाते हैं। कुछ सोचकर ज़ोया गुस्से से अबीर के कमरे में अंदर चली गई। उसने अंदर जाकर देखा तो अबीर उसे पूरे कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। तब ज़ोया को बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। ज़ोया समझ चुकी थी कि अबीर राठौर बाथरूम में है। ज़ोया ने अपना इरादा मजबूत किया और अबीर के बेड पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी थी। ज़ोया ज़्यादा देर अपने पेट की वजह से खड़ी नहीं हो पाती थी, इसलिए वो बैठ गई थी। ज़ोया ने ठान लिया था कि वो अबीर को मरहम पट्टी करके ही जाएगी। वहीं अबीर शावर के नीचे खड़ा हुआ यही सोचे जा रहा था कि आखिर क्यों वो इस मामूली सी लड़की के आगे कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों, आखिर क्यों? एक ज़माना था इस अबीर राठौर के आगे किसी की हिम्मत नहीं होती थी खड़ा होने की, ना ही किसी का सिर उठता था, लेकिन न जाने इस मामूली सी लड़की में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो मेरे सामने खड़े होने के साथ साथ मुझे जो मनाए वो सुना भी देती है। आखिर क्यों उसे कुछ नहीं कह पाता हूँ? क्यों उसके कुछ भी कहने से मुझे फ़र्क पड़ता है? आखिर क्यों वो कमज़ोर सी लड़की इस लंबे चौड़े आदमी पर भारी पड़ गई है? क्यों, आखिर क्यों? अबीर खुद से ही सवाल जवाब किए जा रहा था और उसे नहाते हुए पूरे 40 मिनट हो गए थे। 40 मिनट एक जगह बैठे बैठे ज़ोया की कमर दर्द करने लगी थी और वो दवाई का बॉक्स हाथ में लिए हुए ऐसे ही बेड पर लेट गई थी। उसका एक पैर बेड से नीचे लटक रहा था और एक ऊपर था। वो ऐसे ही सीधी लेटी हुई नींद के आगोश में चली गई थी। वहीं दूसरी ओर अरमान एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग में गया था। असल में वो पूरी की पूरी बिल्डिंग अरमान ठाकुर की ही थी। वहाँ उसके ग्राउंड फ्लोर पर अरमान के बुलाए हुए सभी आदमी जमा थे। अरहम ने सब आदमियों को लाइन से खड़ा कर दिया था और बोला था, अभी भाई आकर तुम लोगों से बात करेंगे, इसलिए भाई की एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई अपनी बात दोबारा से रिपीट करेंगे। जैसे ही अरमान के सब आदमियों ने अरहम की बात सुनी तो वे सवालिया नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे और अरमान के वहाँ आने का इंतज़ार करने लगे।
जल्दी ही एक स्टाइलिश से कपड़े पहने हुए, आँखों पर काला चश्मा लगाए हुए अरमान ठाकुर उन सब के सामने खड़ा हुआ था। अरमान बहुत ज़्यादा एरोगेंट मूड में लग रहा था। अरमान को देखते ही उन सब ने उसे ग्रीट किया था, जैसे गुड मॉर्निंग, हेलो, लाइक दैट। लेकिन अरमान ने उनमें से किसी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। तब अरमान ने सीधे सीधे कहा, मुझे टाइम पास करना या कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, इस वक्त इस टेबल पर एक लड़की की फ़ोटो की पूरी 50 कॉपियां रखी हुई हैं। आप सब एक एक कॉपी उठाओ और इस लड़की की खोजबीन शुरू कर दो। मुझे ये लड़की बिल्कुल सही सलामत चाहिए, और जो कोई भी इस लड़की का पता सबसे पहले मुझे बताएगा तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जिसके नीचे तुम लोग खड़े हुए हो, ये मैं उसके नाम कर दूंगा। जैसे ही अरमान ने ये कहा, उन 80 लोगों में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई, मानो वे आज ही इस लड़की को ढूंढ कर ला देंगे और अरमान के बिल्कुल ठीक सामने खड़ा कर देंगे। सभी आदमी जल्दी जल्दी से टेबल पर रखी हुई ज़ोया की फ़ोटो उठाने लगे और एक एक करके वहाँ से निकलने लगे थे, और जल्दी ही वो पूरा फ्लोर खाली हो गया था। उन सब के जाने के बाद अरहम अरमान से बोला, भाई ये किया क्या आपने? ये पूरी बिल्डिंग जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ है, इसको देने का वादा कर लिया। तब अरमान बोला, मेरे लिए ज़ोया सबसे ज़्यादा कीमती और ज़रूरी है। जो कोई मुझे उसका पता बताएगा, मैं ये बिल्डिंग तो क्या, वो जो मांगेगा वो उसे दे दूंगा। तब अरहम बोला, भाई मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे नहीं लगता ज़ोया इस शहर में हो, वो ज़रूर कहीं और चली गई है, क्योंकि अगर ज़ोया इस शहर में होती तो ज़रूर अभी राठौड़ अब तक उसे ढूंढ चुका होता। तब अरमान बोला, अब वो इस शहर में है या नहीं इसका पता हमें 2 दिन में चल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और उसे किसी दूसरे शहर में भी खोजेंगे। जब तक मैं अपनी तसल्ली नहीं कर लेता कि वो इस शहर में है या नहीं, तब तक मैं किसी दूसरे शहर में नहीं जाऊंगा। अभी अरहम कुछ और कहना चाहता था कि तभी मेहर का नाम उसके बड़े से फ़ोन की स्क्रीन पर शो होने लगा और वो मेहर से बात करने के लिए वहाँ से निकल गया। और वहीं अरहम अपनी तरीके से ज़ोया को खोजने के लिए अपने आदमियों से मिलने के लिए निकल गया।